ओम शांति। सुबह का समय है, ओम शांति अगर उच्चारण किया जाए तो बहुत अच्छा है। मैं दो बार और बोलूंगी, आप खुशी से मुस्कुरा करके ओम शांति का जवाब देंगे। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगा ना, शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, पद्मापद्म भाग्यशाली, आबू पर्वत पर पधारे, ज्ञान सरोवर में आप सब रह रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वो धरती है जिसमें आदि देव ब्रह्मा जी ने, सरस्वती जी ने अपने वत्सों के द्वारा तपस्या की है। इसका शास्त्रों में भी गायन है। बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी के साथ पुष्प विमान के द्वारा जा रहे थे, तो जब ये आबू पर्वत आया तो उनका विमान रुक गया। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, ये विमान क्यों रुक गया? तो हनुमान जी ने जब अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये वो धरती है जहां पर सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा जी ने वत्सों के साथ तपस्या की है, और जब तक हम इस विमान से उतरकर यहां पर हम माथा नहीं टेकेंगे तब तक हमारा विमान आगे नहीं जा सकता। तो कहते श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी उतरे, उन्होंने प्रणाम किया, उसके बाद आगे चला। तो ये वो धरती जहां पर ब्रह्मा बाबा ने अपने वत्सों के साथ तपस्या की, आज आप उस धरती पर। तो मैं परमपिता परमात्मा शिव की ओर से, अपनी वरिष्ठ दीदी दादियों की ओर से, आप सभी पधारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। आज का विषय है राजयोग का आधार और उसकी विधि। हमारे भारतवर्ष का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है, इसको सीखने के लिए फॉरेन से भी लोग आते हैं। लेकिन राजयोग क्या है, इसकी विधि क्या है, इससे प्राप्ति क्या होगी, ये समझने का विषय है। आप सभी दो दिन से यहां रह रहे हैं, यहां का मौसम और यहां का वातावरण, आप सभी का मन खुशी से नाच रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है ना। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये खुशी आपकी अविनाशी हो जाए, सदा के लिए हो जाए, क्योंकि आज का व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में है, तनाव में है। इस सभा में भी अगर मैं प्रश्न करूंगी कि पिछले 10 दिन से जो ये समझे कि मैं बिल्कुल तनाव में नहीं था, मैं बहुत खुश था, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं था, वो जरा हाथ खड़ा करे। देखिए इतनी सभा में कितने लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम डिप्रेशन से, तनाव से दूर हों और हम सदा के लिए खुशी प्राप्त करें। उसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा? कहते मनुष्य जब घड़ी घड़ी बीमार होता है, उसको घड़ी घड़ी बुखार चढ़ता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को कहता है मुझे बहुत जल्दी जल्दी बुखार चढ़ता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर की आंतरिक शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए आपको घड़ी घड़ी बुखार चढ़ता है। ठीक इसी प्रकार हम जो दुखी हैं, अशांत हैं, डिप्रेशन में हैं, अविनाशी सर्जन विश्व का पिता परमपिता परमात्मा भी हम आत्माओं को यही कहते हैं कि हे आत्मन, आप सभी के अशांति का कारण, दुख का कारण क्या है? आपकी आत्मा की आंतरिक शक्ति कमजोर हो गई है। उस शक्ति को, अपने आप को उभारने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं कौन। इस शरीर के अंदर आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा क्या करती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? इसको बहुत गहराई से जानने की जरूरत है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार अपने गुरुजी के आश्रम में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यही तो मैं समझने के लिए आया हूं कि मैं कौन। ये एक पहेली है, मैं कौन। सबसे बड़ी भूल जो हमारी आत्मा अशांत है, हम अपने आप को भूल गए। राजयोग हमें सिखाता है कि तुम कौन, कहां से आए। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि राजयोग और हठ योग दो प्रकार का योग है, एक है हठ योग, एक है राजयोग। हठ योग के बारे में तो आप सब जानती हैं कि जिसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें प्राणायाम, शवासन, शीर्षासन, ये सब क्रियाएं जो हैं, पवन मुक्त आसन, जितने भी आसन हैं, ये शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए है। लेकिन राजयोग ये आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए है। राजयोग का मतलब है घर गृहस्थ में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, बाल बच्चों के संग, सबके संग रहते हुए हम उस पिता परमात्मा को याद कर सके। योग का मतलब है संबंध, योग का मतलब है जोड़, योग का मतलब है कनेक्शन। जब तक हमारा कनेक्शन सही नहीं, हम शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और राजयोग का मतलब ये पहेली को समाधान करना कि मैं कौन और मेरा कौन। योग किसको लगाना है और किससे लगाना है, जोड़ है। योग का मतलब जोड़। आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ संबंध ही राजयोग कहलाता है। लेकिन सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है मैं कौन। सबसे बड़ी भूल हमारे से ये हुई कि हम अपने आप को भूल गए। देह के नाम को अपना नाम, देह के देश को अपना देश, देह के धाम को अपना धाम, देह के संबंधियों को अपने संबंधी समझ बैठे। हम इस संसार में आए थे, जाना भूल गए। मालूम है आए हैं, जाना है, लेकिन ये भूल गए। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि मैं कौन। मैं इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। इसको भूलकर हमने क्या समझा कि मैं रूपवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं धनवान हूं, लेकिन ये मैं एक सेकंड में जाने वाली है। आत्मा शरीर से अलग हुई, ये मैं खत्म। तो इस शरीर के अंदर आत्मा का क्या पार्ट है? यूं तो आप सबने सुना होगा कि आत्मा शक्ति है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा काटने से कटती नहीं, जलाने से जलती नहीं, मारने से मरती नहीं, यहां तक जानते हैं। लेकिन इसके बाद आत्मा एक मुख्य पार्टधारी है और आत्मा इस शरीर को चला रही है, जन्म मरण के चक्कर में आती है। और वर्तमान समय हमारा ये जीवन बहुत मूल्यवान है। कितनी देर किया है, हमारी आयु कितनी है, जो हम मैं कर बैठे कि मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन मैं कौन? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्वरूप क्या है? कल के लेसन में आपने सुना होगा कि आत्मा ज्योत स्वरूप है। गुरबानी में भी आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, इसका मूल पहचान। वृक्ति के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है और आत्मा शरीर में कहां विराजमान है? कहते हैं भ्रुक्ति के बीच में चमकता है गजब सितारा। तभी आप देखें, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो तिलक जरूर लगाते हैं, माताएं भी बिंदी यहां लगाती हैं। ये आत्म स्मृति की निशानी है। हमारी आत्मा इस शरीर में मस्तक पर विराजमान है। ये शरीर एक कार है, आत्मा ड्राइवर है। ये शरीर एक मकान है, आत्मा इसकी मालिक है। ये शरीर एक कुटिया है, आत्मा इसमें तपस्वी बैठा है। आत्मा की ये सीट फिक्स है। आप सब जानते हैं कि कार के ड्राइवर की सीट फिक्स होती है, बस के ड्राइवर की सीट फिक्स होती है, ट्रेन के ड्राइवर की सीट फिक्स होती है। ड्राइवर कहे कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठ करके कार चला लूं, चलाएगा? चला सकता है? नहीं चला सकता। ठीक इसी प्रकार मैं ज्योत स्वरूप आत्मा इस भ्रुक्ति में निवास करती हूं, और आत्मा सात गुणों से भरपूर है। हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमने आज दिन तक क्या कहा भगवान के आगे? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। और एक तरफ कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। हम उस पिता परमात्मा की संतान है, जैसा बच्चा वैसा बाप। हमारा पिता सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो हमें भी सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे बने नहीं। हम जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण अपने आप को भूल गए। इसलिए हमने कहा मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा वर्तमान समय ये बताते हैं कि आप मेरी संतान हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। लेकिन आज दुख घनेरे क्यों? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कट हो चुका है। हमारी आत्मा इस संसार में, इस दुनिया के मेले में आकर उस पिता को भूल गई है। एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है, पिता की उंगली पकड़ी हुई है, तो बहुत प्यार से मेला देख रहा है, उसका एंजॉय कर रहा है। लेकिन उस मेले में अगर बच्चे की उंगली पिता से छूट जाए और बच्चा गुम हो जाए तो क्या करेगा? उसको दूसरे उसके पिता के आयु के उसको कितनी खाने की चीजें दे दें, कितने सुंदर खिलौने दे दें, वो बच्चा मानेगा? बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? उसको अपना पिता चाहिए। हमारा भी यही हाल हुआ। हम इस संसार में आए, ये शरीर धारण किया, और इस दुनिया के मेले में हमारा जो हाथ था उस पिता से छूट गया। राजयोग हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा का कनेक्शन उस पिता परमात्मा से जोड़ना है। ये लाइट आ रही है, इसका कनेक्शन है। थोड़ी सी भी तार लूज हो जाए तो लाइट नहीं आएगी। इसी प्रकार हमारी आत्मा का कनेक्शन भी उस पिता परमात्मा से टूट गया है। तो हम क्या करें? हमें पहले अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, आत्मा मस्तक के बीच में निवास करती है, और आत्मा नीच पापी कपटी नहीं है। आत्मा भगवान की तरह, परमात्मा की तरह गुणों से भरपूर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अपने स्वरूप को भूल गई है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, ये समझने की आवश्यकता है। शरीर और आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर कर्म करता है। आत्मा जब इस शरीर से अलग हो जाती है तो हम सब जानते हैं शरीर डेड हो जाता है। आंखें होती हैं, देख नहीं सकता। कान होता है, सुन नहीं सकता। मुख होता है, बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा अलग हो गई। तो ऐसी कौन सी चीज है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ जाती है? आत्मा तीन शक्तियों से भरपूर है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन चैतन्य सत्ता है, मन एक संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, और संस्कार जो हम कर्म बार बार करती हैं वो हमारा संस्कार कहलाता है। हमारी आत्मा तीन शक्तियों से भरपूर है। जैसे ये शरीर है, शरीर सब कर्म इंद्रियों के मिलाप को कहा शरीर। इसी प्रकार आत्मा की जो इंद्रियां हैं, शक्तियां हैं, वो है मन, बुद्धि, संस्कार। अलग से हाथ काट के रखें तो कहेंगे ये हाथ है, अलग से पैर काटे तो कहेंगे ये पैर है, लेकिन सब कर्म इंद्रियों के समूह को शरीर कहा जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां आत्मा में है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो संकल्प नहीं कर सकता, निर्णय नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता। आत्मा जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन चीजें उसके साथ जाती है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि मन एक संकल्प शक्ति है। हमारे पास मन एक संकल्प शक्ति है, हम जो चाहे कर सकते हैं। कहते मन के जीते जीत, मन के हारे हार। लेकिन मन को हमने बहुत ऐसा दिखा दिया, कहते मन लोभी, मन लालची, मन पापी, मन चोर, मन के मते ना चालिए, घड़ी घड़ी मन और। जी मन तो घोड़े के समान है, ये तो कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है, मन घोड़े के समान है। घोड़ा तो बहुत अच्छी चीज है, घोड़ा तो बहुत महंगा होता है, और घोड़ा बहुत बुद्धिमान होता है। घोड़े के ऊपर बैठकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त है घोड़ा आपको मंजिल पर भी पहुंचाएगा और आपको खाई में भी गिराएगा। अगर घोड़े की लगाम बैठने वाले के हाथ में है तो मंजिल पे ले जाएगा, अगर लगाम नहीं है तो क्या होगा, उसको खाई में गिराएगा। तो हमने देखना है कि मन हमारे पास से कितनी शक्ति है, हम इसको कहां प्रयोग करते हैं। मनुष्य जो भी कार्य करता है पहले मन में संकल्प चलता है। आज आप यहां बैठे हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 15 दिन पहले आपने अपनी सीट बुक कराई, आपने अपने मन को मजबूत किया कि हमने जाना है, तो जहां चाह वहां रहा आप पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार मन एक संकल्प शक्ति है और उसी मन के द्वारा हम प्रभु से मिलन मना सकते हैं। हम इसी मन के द्वारा राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप। मुझे बात याद आई, कहते एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि ये जो इतनी ऊंची चट्टान है क्या इससे बड़ा कोई है, बोला हाँ इससे बड़ा लोहा है जो इसे चूर चूर कर देगा। फिर उन्होंने पूछा क्या लोहे से बड़ा कोई है, बोला हाँ लोहे से बड़ी अग्नि है जो इसको पिघला देगी। फिर उन्होंने पूछा क्या अग्नि से बड़ा कोई है, बोला हाँ अग्नि से बड़ा पानी है जिसको शीतल कर देगा। फिर उन्होंने पूछा क्या पानी से बड़ा कोई है, बोला हाँ पानी से बड़ी वायु है वो इसको जिधर चाहे ले जाए। फिर उन्होंने कहा ऐतराज ना करें तो एक प्रश्न और पूछूं, क्या वायु से बड़ा भी कोई है, बोला हाँ वायु से बड़ी है मनुष्य की संकल्प शक्ति, इसको जिधर चाहे उधर ले जाए। तो राजयोग का संबंध मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान और पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए पहले मुझे अपने स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता है। मुझे अपने स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता है और इसका बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। कहते ना कर्त कर्त अभ्यास से जड़मति होत सुजान, क्योंकि हम बहुत समय से देह अभिमान में रहे हैं, देह भान में रहे हैं। हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते ये स्मृति में लाएं कि मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही है। और पहली बात कि आत्मा और परमात्मा का संबंध राजयोग कहलाता है, तो राजयोग का आधार 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले परिचय, मैं कौन और मैं किसके संतान, आत्मा का परिचय, दूसरा परमपिता परमात्मा का परिचय। लौकिक में भी आप देखिए, आप किसी से संबंध जोड़ते हैं तो पहले आप उसका परिचय लेते हैं, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, परिचय लेती हैं। उसके बाद फिर आप डिसाइड करती हैं कि मुझे इस व्यक्ति के साथ कौन सा संबंध जोड़ना है। बड़ा होगा तो आप कहेंगे आप मेरे पिता के समान हैं, बराबर का होगा तो आप कहेंगे आप मेरे भाई के समान हैं, छोटा होगा तो आप कहेंगे आप मेरे बच्चे के समान हैं। परिचय के बाद कौन सा संबंध जोड़ना है ये हम डिसाइड करते हैं, और फिर जैसा संबंध होता है उस संबंध के आधार से प्यार होता है, और फिर प्यार के आधार पर हमें प्राप्तियां होती हैं। इसी प्रकार राजयोग हमें चार बातों का टेंशन देता है जो आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले परिचय, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा सात गुणों से भरपूर हूं, यह आपने समझ लिया। मैं तीन शक्तियों का समूह हूं, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, जैसे कार और ड्राइवर, जैसे मालिक और मकान, जैसे कुटिया और तपस्वी, और मैं बैठ करके ज्योत स्वरूप आत्मा, पिता परमात्मा जो ज्योत स्वरूप है। फिर दूसरी बात यह है कि पिता परमात्मा का परिचय क्या है। वो पिता परमात्मा डिटेल में तो आप समझते रहेंगे, समझने का अभ्यास करेंगे। पिता परमात्मा किसको कहते हैं? हम कहें कि सब भगवान के रूप है, जिसको भी समझो सब भगवान है, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि एक बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन है, तो पिता के आयु के सब व्यक्तियों को कहे कि ये सब मेरे पिता हैं, रिस्पेक्ट देगा, मुंह से बोलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में वो पिता उसको वर्षा नहीं देगा। वर्षा वही देगा, प्रॉपर्टी वही देगा, अधिकारी वही बनाएगा जिसने उसको जन्म दिया होगा। इसी प्रकार राजयोग हमें सबसे पहले परमात्मा का परिचय क्या है, उसमें आपको जानने की आवश्यकता है कि भगवान कहते किसे हैं। सबसे पहली बात, भगवान वो जो सर्वमान्य हो। दूसरी बात, भगवान वो जो निराकार हो। तीसरी बात, भगवान वो जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हो। भगवान वो जो सर्वज्ञ हो। तो हम जिसको मानते हैं वो कौन है? आप सबने यहां पर भी सुना होगा, समझेंगे भी कि पिता कौन, भगवान कौन, सर्वात्माओं का पिता कौन, परमपिता परमात्मा शिव, शिवलिंग की प्रतिमा सारे विश्व में आप देखेंगे यादगारी है, और वो प्रतिमा उसको सभी आत्माओं ने मान्यता दी है, देव आत्माओं ने मान्यता दी है, धर्म आत्माओं ने मान्यता दी है। कहीं भी आप जाएंगे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देश शिवा वर मोहे हे शुभ कर्मन्ते कबू ना करो। श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग की प्रतिमा की स्थापना करके शिव की पूजा की। गोपेश्वर में भी दिखाती हैं कि श्री कृष्ण जी ने शिव की पूजा की। मक्का में भी संगे अश्वत्थ नाम से पत्थर है जिसको वह चूमती हैं, वो भी शिव की प्रतिमा के आकार जैसा है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार। तो पिता परमात्मा वो जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, जिनको अपना शरीर नहीं है। आप देखेंगे जो शिव की प्रतिमा को हम मानते हैं, उसकी प्रतिमा के लिए क्या कहते हैं, सदा शिव। उनकी प्रतिमा के साथ सदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सदा है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, और वो शिव पद शिव पिता परमात्मा जैसा मुझ आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप है, वैसा ही वो पॉइंट है, लाइट है और गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है। जैसे सागर का कोई अंत नहीं होता, भगवान की महिमा में हम क्या कहते हैं, वो सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है। गायन भी है, सात समुंदर मस करूं, लेखनी करूं बर्राए, धरती सब कागज करूं हरि गुण लखना जाए। धरती का कागज बना लिया जाए, जंगल की लकड़ी की कलम बना ली जाए, समुंदर की स्याही बना ली जाए, तो भी उस हरि के गुण नहीं गाए जा सकते। वो असीम है। हम आत्माओं को भी असीम शरीर से न्यारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर उस पिता परमात्मा जिसका रूप ज्योत स्वरूप है, उसको याद करना होगा, उसके साथ संबंध जोड़ना होगा। वो ज्ञान के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, वो पवित्रता के सागर हैं। तो अभी हम सब 5 मिनट के लिए हम पहले अपने स्वरूप में स्थित होंगे, मैं कौन। यही सबसे बड़ी भूल की कि मैं कौन। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, 1 मिनट के बाद एक गीत बजेगा, आप अपनी जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उस इष्ट के ध्यान में बैठेंगे। ये लाल लाइट जलाने का भी मतलब यही है कि परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव जहां पर निवास करती हैं, इन 5 तत्वों के पार जिसको परम धाम अखंड ज्योतिमय तत्व कहा जाता है, शांति धाम निर्वाण धाम, वहां के रहने वाले हैं। वहां का जो स्वरूप है, रंग है, वो प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पर हमारे पिता परमात्मा भोलानाथ निवास करती हैं। कहते हैं खुदा साथ में आसमान में रहता है। गुरबानी में भी आता है, सचखंड बसे निरंकार, कर कर विखे नजर निहाल। और परमात्मा भी कहते हैं कि मैं परम धाम का रहने वाला हूं, मैं शांति धाम का रहने वाला हूं जहां प्रकाश ही प्रकाश है। तो भी आप सब 5 मिनट के लिए इस देह को भूलकर चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति को ग्रहण करते हुए मैं इस 5 तत्वों के शरीर में इन आंखों द्वारा देखने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ज्योत स्वरूप आत्मा इस पांच तत्व की देह भ्रुक्ति रूपी आसन पर विराजमान हूं। इन दो नयनों के बीच मस्तक में मेरा निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा ज्योत स्वरूप हूं। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। मेरा वास्तविक धर्म शांति है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मेरे पिता परमात्मा ज्योत स्वरूप है। ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। मैं ज्योत स्वरूप आत्मा पिता परमात्मा ज्योत स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट उस पिता को याद कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं। मेरे पिता शांति के सागर है, ज्योत स्वरूप है। खो जाइए पिता परमात्मा के प्यार में। याद कीजिए शांति के सागर पिता परमात्मा को।
तुमको निहारने का दिल ये चाहता
सब आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान हैं, अच्छी तरह से उसको जानकर पहचान कर। दूसरी बात आती है संबंध की। हमने मुख से गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। दिल से पूछिए, हमने यहां से संबंध जोड़ा या यहां से जोड़ा? मुख से तो हमने ठीक कहा, लेकिन हमारा जो दिल के संबंध है वो देहधारियों से जुड़े रहे। और फिर जो हमारा एक जन्म के संबंध, उनके लिए हमने सारी जिंदगी लगा दी। जो हमारा अविनाशी पिता जन्म जन्मांतर हर जन्म में काम आने वाला, उसके लिए हम कहते हैं समय नहीं है, फुर्सत मिलेगी तो याद करेंगे। लौकिक संबंध जब इसी जन्म के हैं, 60-70-100 साल का हमारा संबंध है, उसके लिए हम सारी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन पिता परमात्मा, यही हम बच्चों को आदेश देते हैं कि बच्चे थोड़ा सा समय निकालकर उस पिता को भी याद करो। तीन प्रकार के माता पिता होते हैं। पहले जो सिर्फ बच्चे को जन्म देते हैं, लौकी की बात करती हूं, उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं निभाते। दूसरी प्रकार के माता पिता होते हैं जो जन्म भी देते हैं और संपत्ति भी देते हैं बच्चों को। और तीसरी प्रकार के माता पिता होते हैं जो बच्चे को जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं। तो आप गहराई से ज्ञान को समझेंगे तो पिता परमात्मा जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग में इस धारा पर अवतरित होती हैं, तो हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म भी होता है। वो हमें अटल अखंड निर्विघ्न अपने खजाने के मालिक भी बनाते हैं और हमें दैवी संस्कारों से भी भरपूर करते हैं। उस पिता के साथ हमारा अविनाशी संबंध है। अविनाशी संबंध का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। तो सिर्फ हमें ये लक्ष्य रखना है कि लौकिक संबंध में तो हम माँ अलग, पिता अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, दोस्त अलग, सबसे संबंध निभाती हैं। उनका स्वभाव, उनका संस्कार याद करना पड़ता है, वैसा निभाना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उससे हमें सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। भक्ति मार्ग में भी आप देखेंगे कि जिस जिस भगत ने जिस जिस संबंध से याद किया उसको प्राप्ति हुई। मीरा ने पति के रूप में उसको याद किया, आप सब जानते हैं। प्रहलाद ने पिता के रूप में उसको याद किया। सुधामा ने सखा के रूप में उसको याद किया। माता अनुसुईया ने बच्चे के रूप में उसको याद किया। श्री हनुमान जी ने सेवक के रूप में याद किया, उनको प्राप्तियां भी हुई। हनुमान जी श्री राम के परम भगत थे और उनमें कितनी विशेषताएं थी, कितना प्यार था, आप सब जानते हैं। कहते हैं हनुमान जी पहले शक्तिशाली स्थिति थी, किससे प्राप्त हुई? भगवान से। संजीवनी बूटी उठा करके ले आए और अव्यभिचारी याद थी, दिखाते हैं उनकी फोटो में सीता राम, कोई दिल खोले तो सीता राम, कितना उनका भगवान से प्यार था। लेकिन अगर हमारे दिल को कोई खोले तो हमें चेक करना है कि इस दिल पर कितने लोग बैठे, कितनों की याद हमारे अंदर है, तो इस दिल में हम भगवान को कैसे बिठा सकेंगे। और फिर हनुमान जी के लिए बताते हैं कि जब सीता माता एक बार मांग भर रही थी संधूर से, तो हनुमान जी ने पूछा कि माते ये क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि ये मांग में संधूर भर रही हूं। क्यों भर रही हैं? उन्होंने कहा इससे श्री राम खुश होते हैं। अच्छा, तो श्री राम खुश होती हैं इतने से संधूर से? तो उन्होंने सारे अपने शरीर पे मार लिया। तभी उनको क्या कहते हैं? केसरी नंदन। भी भगवान किस बात में खुश होते हैं? हनुमान जी में विशेषता थी। हनुमान मान का हनन करने वाला, एक राम के सिवाय और कोई को याद करने वाला नहीं। तो क्या हमारा उस भगवान से इतना प्यार है? क्या हम उसको इतना प्यार से याद करते हैं? कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि भगवान मन बड़ा चंचल है, तो भगवान ने उसको दो बातें बताई। दो बातें याद रख, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। हम इस संसार में आए हैं पाठ बजाने के लिए, हमें जाना है। दूसरा अभ्यास, तुम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते तो मेरी स्मृति में रह, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधरिमान पर तुझे माम एकम शरण ब्रिज। हे अर्जुन, तू देह के सब धर्म को छोड़ मेरी शरण में आ, सर्व संबंध तू मेरे से जोड़। तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है भगवान संबंध जोड़ना तो सहज है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। संबंध जोड़ना सहज है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहती हैं? एक काम तू कर, एक काम मैं करता हूं। तू जोड़ने का काम कर, निभाने का काम मैं करूंगा। और बताती हैं कि महाभारत काल में जब अर्जुन बार बार जीत रहे थे और दुर्योधन हार रहे थे, तो भीष्म पितामह ने ये घोषणा की कि कल सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन का वध कर दिया जाएगा। भीष्म पितामह ने घोषणा की कि कल सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन का वध कर दिया जाएगा। तो सब ने ये बात सुनी, अर्जुन आराम से आकर के अपने कैंप में सो गए। श्री कृष्ण अर्जुन के कैंप में आते हैं, अर्जुन सो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तू सो रहा है, तू कल मार दिया जाएगा। वो कहता हां प्रभु, वो फिर सो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन कल तू मर जाएगा। कहता हां प्रभु, फिर सो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते, अरे अर्जुन कल तू मार दिया जाएगा, कल तू मर जाएगा, क्या तुझे अपने मरने की चिंता नहीं है? तो अर्जुन क्या कहते हैं, प्रभु जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, मुझे अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो इधर भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा कि कल सुबह तुम अपनी पत्नी को कहना कि मेरे को चरण स्पर्श वंदना करे तो मैं उससे सौभाग्यवती भाव का वरदान दूंगा। ये बात सबने सुनी। कहते कि बाल ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म मुहूर्त हो और उस समय वो आशीर्वाद देती हैं तो कभी खाली नहीं जाता। और कहते श्री कृष्ण भागे भागे द्रौपदी के पास गए। कहते द्रौपदी चल, दादा श्री को चरण स्पर्श वंदना कर और सौभाग्यवती भव का वरदान ले। तो द्रौपदी कहती है कि दादा श्री ने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया है और मैं चली जाऊंगी तो वो भी आ जाएगी तो कैसा लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वो आलसी है, वो हार श्रृंगार करने में समय लगा देगी, तैयार होने में, तू चल। द्रौपदी मान जाती है। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। और भीष्म पितामह के कैंप में जाते हैं, कौरवों की तरफ है सुबह के समय। और द्रौपदी बाहर चप्पल उतारती है और अंदर जाती है और श्री कृष्ण द्रौपदी की चप्पल को फोल्ड कर अपने बाजू में छिपाकर और वृक्ष के पीछे, कैंप के सामने वृक्ष के पीछे छिप जाती हैं। और सुबह का समय होता है, थोड़ा थोड़ा जैसे बुजुर्ग आदमी को नींद का भी होता है। तो द्रौपदी कहती है, दादा श्री चरण स्पर्श वंदना। तो भीष्म पितामह कहते सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी बार कहती है, दादा श्री चरण स्पर्श वंदना। फिर वो कहते सौभाग्यवती भव। फिर तीसरी बार कहती है, दादा श्री चरण स्पर्श वंदना। इस प्रकार वो चौथी बार भी कहती है और पांचवी बार भी कहती है। पांचवी बार क्यों कहती है, क्यों कहती है? क्योंकि उसके पांच पति थे। पांचवी बार कहती है, दादा श्री चरण स्पर्श वंदना। तो भीष्म पितामह कहती हैं, सौभाग्यवती भव। तो फिर वो देखते हैं भीष्म पितामह कि पूछती है कौन, थोड़ा सा अपने उसमें आलस से निकलते, कहते कौन? तो कहती है, मैं पांचाली द्रौपदी। तो भीष्म पितामह कहते, वरदान किसको देना था और ले कौन गया? वरदान किसको देना था और ले कौन गया? और उसके बाद भीष्म पितामह उठते हैं और आगे आगे द्रौपदी बाहर आती है और भीष्म पितामह आती हैं और भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि है ये श्री कृष्ण की चाल। तो फिर जब बाहर आती है तो वो देखते हैं कि श्री कृष्ण वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं। तो फिर आकर के जब वो भाकी पहनती हैं तो द्रौपदी की चप्पल नीचे गिर जाती है। तो भीष्म पितामह समझ आते, तो कहने का भाव ये है कि हम अगर सर्व संबंध उस भगवान से जोड़ते हैं तो हर समय वो उस संबंध को निभाने के लिए आतुर होता है। जैसे कहते दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, एक ने कहा कि मेरी तो सारी मन की आश पूरी हो जाती है, मन की बात पूरी हो जाती है। दूसरा कहता है तेरी मन की बात कैसे पूरी होती है, मन की बात तो श्री कृष्ण की पूरी नहीं हुई, मन की बात राम की पूरी नहीं हुई। श्री कृष्ण देवकी के जन्म लिया और यशोदा ने पालना की, रियल मदर से तो उसकी पालना भी नहीं हुई। और श्री राम जिसको सुबह राज गद्दी मिलनी थी और उसको रातों रात वनवास हो गया, तो मन की बात श्री कृष्ण की पूरी नहीं हुई, मन की बात राम की पूरी नहीं हुई, तो तेरी कैसे पूरी हो जाएगी। वो कहता मैंने मन ही भगवान को दे दिया है। क्या समझा? कहता मैंने मन ही भगवान को दे दिया है। तो कहने का भाव ये है कि गीता में आता है मन मना भव मध्याजी भव, हे अर्जुन तू अपना मन मुझ में लगा, तू सर्व संबंध मेरे से जोड़, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बुद्धि योग मेरे से लगा। भगवान कहती है कि हे आत्मन तुम्हारे पास 8 घंटे, 8 घंटे को 3 हिस्से में बांट दो, 24 घंटे हैं उनको 3 हिस्से में बांट दो, 8 घंटे तुम आराम करो, 8 घंटे तुम शरीर निर्वार्थ काम करो, बाकी 8 घंटे क्या करते हो? बाकी 8 घंटे एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनर्याद तुम मुझे याद करो। अब उसमें विधि भी बताती है कि हमको कैसे याद करना है। अपनी दिनचर्या बना लीजिए। आप कहेंगे हम तो अपने बिजनेस में बिजी रहती हैं, हम अपने कारोबार में बिजी रहती हैं, लेकिन नहीं, जिस चीज का हमारे मन में महत्व होता है उसको हम अवश्य करते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। हमने भक्ति मार्ग में भी सुना था, कहते ब्रह्म मुहूर्त में शिव पार्वती का विमान ऊपर से जाता है और जो सोया होता है उसको श्राप देकर जाती हैं, और जो जाग रहा होता है भगवान को याद कर रहा होता है उसको वरदान दे करके जाती है। तो हम सब चाहते हैं कि भगवान हमें वरदानों से भरपूर करे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त हम उस पिता परमात्मा को याद करें। वैसे भी देखो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप पापा को गुड मॉर्निंग करो, मम्मी के पांव हाथ लगाओ, छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, तो वो पिता परमात्मा हमारा पिता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जब उसको याद करती हैं, जिस भी रीति से आप याद करती हैं, हमको याद है हम बचपन में थे तो हमारे माता पिता हमको हनुमान चालीसा गीता का अध्याय जरूर याद कराते थे कि बच्चे नहा धो करके पहले आप ये पाठ करो, बाद में आपको भोजन मिलेगा। लेकिन आज के बच्चे टेंशन में क्यों हैं? सुबह उठते ही उनको कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो बच्चे बेचारे पजल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरना चाहती हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चे आगे चल करके एक संस्कारी बने, तो वो कैसे बनेंगे? जब हम बचपन से, कई हमारे अभी भी परिवार हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। लेकिन बच्चे के संस्कार तब आते हैं जब माँ बाप अपने संस्कारों में वो बात लाती हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं सर्व संबंधों से याद करने की विधि क्या है, आप सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करें, भगवान को याद करें और उसको पिता के रूप में याद करें, भगवान हमारा साथी है। उसके बाद फिर आप नहा धो करके अपना जो कोई पाठ पूजा करती हैं उसको अच्छी तरह से समझें, उसके गुणों का वर्णन करें, भगवान हमें शिक्षाएं क्या देते हैं उन शिक्षाओं का वर्णन करें। उसके बाद पहले पिता के रूप में याद करें, उसके बाद नहा धो करके जब पाठ पूजा करती हैं तो उसको अच्छी तरह से अपने अंदर उतारें और जिसको कहते हैं टीचर के रूप में याद करें कि भगवान ने आज मुझ आत्मा के प्रति क्या शिक्षा दी। फिर सारा दिन आप सतगुरु के रूप में याद करें कि वो पिता के साथ मेरा सतगुरु का संबंध है और सतगुरु ने जो मुझे सुबह शिक्षा दी है मुझे उसको सारा दिन याद रखना है, आज्ञा का पालन करना है। आप देखेंगे कि बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है, टीचर का होमवर्क ना हो तो हो सकता है, लेकिन सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, हम सतगुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सतगुरु ने मुझे क्या शिक्षा दी है उसको आप अच्छी तरह से उतारे और शाम के समय उसको फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में याद करें। शाम को जब आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं उस समय भगवान को याद करें कि आइए आप इसको पहले भोग लगाइए, इसको स्वीकार कीजिए। वो खाता नहीं है लेकिन हमारी भावना देखता है, वो दृष्टि देता है, उसमें प्यार देता है कि बच्चे ने मुझे याद किया है, उसमें शक्ति भरता है और हमारी आत्मा को शांति देता है। तो उसको सखा के रूप में याद करें। तभी तो कहते तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से रास रचाऊं। और रात के समय भगवान को धर्मराज के रूप में याद कीजिए कि सारा दिन में मैंने जो कार्य किया है उसमें मेरे से कोई पाप कर्म हो गया है, कोई गलती हो गई है तो हे भगवान मुझे क्षमा करना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज अगर मेरे से कोई अवज्ञा हुई है, कोई किसी प्रकार की गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आज गलती मैं कल रिपीट नहीं करूंगा। तो धर्मराज बाबा के रूप में आप भगवान को याद करेंगे, अपनी दिनचर्या का ध्यान देंगे तो मैं आत्मा सदा के लिए शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद का अनुभव करूंगी। तो इसलिए हमें उस पिता परमात्मा को सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है कि वो मेरे मात पिता भी हैं, वो मेरे सतगुरु भी हैं, वो मेरे टीचर भी हैं और फिर वो धर्मराज भी हैं। अगर हम उनकी आज्ञा की अवज्ञा करते हैं तो धर्मराजपुरी में जो सजाएं मिलती हैं, भगवान कहते कि इस समय मैं तुम्हें माँ के रूप में, पिता के रूप में शिक्षाएं दे रहा हूं और फिर जब अंत का समय आएगा तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो लास्ट थोड़ा सा समय रह गया, मैं आपको एक छोटी सी कहानी कराती हूं याद। जैसे भगवान ने कहा कि दो बातें याद रखो, पहला वैराग्य, दूसरा अभ्यास। तो वैराग्य, हम आए हैं हमें जाना है। कहते एक बिजनेसमैन था, उसने अपनी जिंदगी में खूब धन कमाया, ना दिन देखा ना रात देखी, ना धूप देखी ना छांव देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, ना भूख देखी ना प्यास देखी। अक्सर हम लोग यही करते हैं कि जो जवानी की उम्र है इसमें अच्छी तरह से कमाई कर लो और बुढ़ापे में आकर के हम आराम से खाएंगे। ये लक्ष्य होता है तो उस व्यक्ति का भी लक्ष्य था कि खूब उसने धन कमाया और बुढ़ापा में अच्छी तरह से व्यतीत करूंगा। जब वो व्यक्ति 45 वर्ष का हुआ तो धर्मराज के यमदूत लेने के लिए आ गए। तो धर्मराज के यमदूत लेने आए तो वो कहता है कि मैंने तो इतना धन कमाया, ना दिन देखा ना रात देखी, ना भूख देखी ना प्यास देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, तो आप मुझे लेने के लिए आ गए, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी कमाई का आधा धन आप ले लीजिए और मुझे जिंदगी के 5 साल दे दीजिए। तो धर्मराज के यमदूत कहते हैं कि हम जिस दुनिया से आए हैं उस दुनिया में ये आपका धन हमारे काम आने वाला नहीं है, इसलिए हम तो आपको लेकर के जाएंगे। तो वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी जो संपत्ति है उसका 1/4 हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जिंदगी के 2.5 वर्ष दे दीजिए। तो धर्मराज के यमदूत कहती है कि हमने आपको बता दिया कि हम जिस दुनिया से आए हैं उस दुनिया में ये आपका धन काम आने वाला नहीं है, इसलिए हम आपको लेकर के जाएंगे। वो देखता है कि अब कोई चारा नहीं, कहता अच्छा आप मुझे जिंदगी के 5 मिनट दे दीजिए। तो धर्मराज के यमदूत मान जाते हैं, कहते ठीक है 5 मिनट आप ले लीजिए। वो अपनी कोठी में जाता है जहां धनमाल रखा है, स्टोर खोलता है, अलमारियां खोलता है, सारा देखता है और माया देवी की आराधना करता है। माया देवी की आराधना करता है, हे माया देवी तू प्रकट हो। तो माया देवी प्रकट हो जाती है, माया देवी को कहता है हे माया देवी मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की, ना दिन देखा ना रात देखी, ना भूख देखी ना प्यास देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, अब तू मेरे को मदद कर। तो माया क्या कहती है, माया देवी कहती है सारी जिंदगी तूने मुझे कैद में रखा, सारी जिंदगी तूने मुझे कैद में रखा, तू मुझे कहीं मंदिर में ले जाता, तू मुझे कहीं गुरुद्वारे में ले जाता, तू मुझे कहीं आश्रम में ले जाता तो मैं तेरी मदद करती, अब तो मैं भी तेरे से गिन गिन के बदले लूंगी। तो किसी शायर ने ठीक कहा है कि जिंदगी भर तिजोरियां भरते रहे हम यूही, जिंदगी भर तिजोरियां भरते रहे हम यूही, अंत में मालूम पड़ा कि मौत का फरिश्ता रिश्वत लेता ही नहीं। तो कहने का भाव ये है कि राजयोग का मतलब है संबंध, जोड़, कनेक्शन, अच्छी तरह से इस बात का ज्ञान लेकर कि मैं कौन, मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा शिव भोलानाथ वो भी जन्म मरण के चक्कर से जा रही है, वो भी विदेही है और मुझ आत्मा के सरल संबंध उनसे, मैं उसको इतना प्यार से याद करूं जैसे मैं अपने लौकिक संबंध को याद करता हूं, अल्पकाल के थोड़े समय के विनाशी संबंधों के लिए मैंने जिंदगी लगा दी, जो मेरा अविनाशी संबंधी है परमपिता परमात्मा ज्योत स्वरूप शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, जितनी महिमा करो उसकी थोड़ी है। तो हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा चलते फिरते उठते बैठते कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा। कोई कार्य करें, आप सुबह अपनी शॉप में जाती हैं, अपनी फैक्ट्री में जाती हैं, फैक्ट्री से अपने घर में आती हैं, पहले मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। ऐसा अगर आप अपनी दिनचर्या में दृढ़ संकल्प करेंगे तो मैं निश्चय करती हूँ, शुभ कामना रखती हूँ, शुभ भावना रखती हूँ कि अवश्य ही आप अपने जीवन में इसका फायदा लेंगे और जन्म जन्मांतर के लिए आप अविनाशी खजानों को भरपूर करेंगे और सदा के लिए खुश रहेंगे, टेंशन दूर होगा। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 3 मिनट के लिए उस पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और अपने स्वरूप में स्थित होकर बैठेंगे। ओम शांति।